नमस्कार।
हाँ
आज हम एक बहुत ही खास पुस्तक के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे।
जी
ये पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा 1988 से 90 के बीच लिखी गई क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तकमाला की एक अहम पुस्तक है।
हाँ 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य भाग एक।
जी हाँ, और एक दिलचस्प बात यह भी है, जैसा पूज्य गुरुदेव ने वसंत पंचमी 1990 को वंदनीय माता जी से कहा था।
हाँ, कि उनका ज्ञान शरीर ही जीवित रहेगा।
बिल्कुल, और इसे उनके इसी क्रांतिधर्मी साहित्य के जरिए जन जन तक पहुंचाना है।
जी
तो आज हम वही प्रयास कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के उस समय के विश्लेषण और भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण को समझना, खासकर उन श्रोताओं के लिए जो कम समय में गहरी बात जानना चाहते हैं।
सही है।
तो चलिए शुरू करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने उस दौर में विज्ञान की, बुद्धि की जो प्रगति थी, उसे स्वीकारा, उसकी उपलब्धियों को माना।
जी हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि उन्होंने उसकी शक्ति को नकारा नहीं।
नहीं नकारा, लेकिन वो इसके गलत इस्तेमाल से, मतलब जो खतरे पैदा हो रहे थे, उसको लेकर बहुत चिंतित थे।
बिल्कुल, जैसे कि प्रदूषण बढ़ रहा था, है ना?
हाँ, प्रदूषण, फिर ये जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनकी अंधाधुंध खपत, जैसे वो खत्म ही हो जाएंगे।
हाँ, संसाधनों की कमी और समाज में भी तो गिरावट दिख रही थी।
नैतिक पतन जिसे कहते हैं, और वो बढ़ती आबादी का मुद्दा, वो भी था।
जी बिल्कुल। और यहाँ ये समझना ज़रूरी है, जैसा आपने कहा, कि पूज्य गुरुदेव ने इन समस्याओं को सिर्फ गिनाया नहीं,
अच्छा।
मतलब लिस्ट नहीं बनाई सिर्फ, कि हाँ वायु प्रदूषण है, खनिज खत्म हो रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ओजोन परत, सामाजिक बिखराव, बेचैनी, ये सब गिनाने के साथ साथ उन्होंने उसे एक बड़े फ्रेम में रखा।
हाँ, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखा। उन्होंने 1989 से लेकर सन 2000 तक के समय को एक खास नाम दिया, युग संधिकाल।
युग संधिकाल। आहा, मतलब क्या था इसका? कोई बहुत मुश्किल दौर? बस मुश्किल तो था ही, पर उससे ज्यादा ये एक एक निर्णायक मोड़ का समय था, एक ट्रांजिशन पीरियड।
अच्छा, बदलाव का समय।
हाँ, एक ऐसा समय जब पुरानी चीजें, पुरानी सोच, पुरानी व्यवस्थाएं, वो एक तरह से चरमरा रही होती हैं और नई व्यवस्था का, नई सोच का जन्म होना होता है।
समझ गया।
और पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये स्थिति विस्फोटक इसलिए हो गई थी क्योंकि भौतिकतावाद, मतलब सिर्फ बाहरी दुनिया, पैसा, सुविधाएं,
हाँ, मटेरियलिज्म।
जी, वो आध्यात्मिकता पर, अंदरूनी मूल्यों पर, इंसानियत पर बहुत ज्यादा हावी हो गया था।
एक तरह से इंसान बेलगाम सा हो गया था, प्रकृति से खिलवाड़, बस आज का फायदा देखना, आगे क्या होगा उसकी चिंता नहीं।
हम
तो एक तरफ तो ये काफी चिंताजनक तस्वीर थी, लेकिन जैसा पुस्तक का नाम है उज्जवल भविष्य, तो जाहिर है पूज्य गुरुदेव सिर्फ समस्याएं बताकर रुके नहीं होंगे, कोई उम्मीद भी।
बिल्कुल, और यहीं पे उनकी दृष्टि खास हो जाती है। इतनी निराशा के बीच भी उन्होंने एक बहुत मजबूत आशा का संदेश दिया। उन्होंने माना कि हाँ, हालात गंभीर हैं, पर बदलाव मुमकिन है, पूरी तरह संभव है।
और रास्ता क्या बताया उन्होंने, कैसे होगा ये बदलाव?
दो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए जो बहुत महत्वपूर्ण है, सदुपयोग और सुनियोजन।
सदुपयोग और सुनियोजन, अच्छा, इनका मतलब क्या हुआ?
देखिए, सदुपयोग मतलब उन्हीं चीजों का सही इस्तेमाल जिनसे समस्या हुई थी, जैसे विज्ञान है, हमारी बुद्धि है, हमारी क्षमताएं हैं।
उनका पॉजिटिव इस्तेमाल।
हाँ, उनका सही, नैतिक, दूरदर्शी इस्तेमाल। और सुनियोजन मतलब सही प्लानिंग, एक व्यवस्थित तरीका जिससे इन शक्तियों को, इन साधनों को सही दिशा दी जा सके। तो ये भाग्य भरोसे बैठने की बात नहीं थी, ये जिम्मेदारी लेने का आह्वान था।
तो ये जो उम्मीद थी, इसका आधार क्या था? सिर्फ एक पॉजिटिव थिंकिंग थी या कुछ और भी?
नहीं, इसके पीछे ठोस कारण थे उनके पास। पहला तो उनका गहरा विश्वास था कि सृष्टि में एक नियंता शक्ति है, एक व्यवस्था है जो संतुलन रखती है, जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी करती है।
अच्छा।
दूसरा, अंतस्फुरणा की शक्ति पर उनका विश्वास, मतलब हर व्यक्ति के अंदर से जो आवाज आती है, सही गलत का जो बोध होता है, वो हमें सही दिशा दिखा सकती है, बदलाव ला सकती है।
और तीसरा?
तीसरा, इतिहास का चक्र, परिवर्तन, मतलब हर रात के बाद सुबह आती है, हर पतन के बाद उत्थान होता है, ये प्रकृति का नियम है। और उन्होंने इसके लिए नॉस्ट्राडामस, जीन डिक्सन जैसे भविष्यवक्ताओं का और कई धर्म ग्रंथों का भी हवाला दिया।
जो एक अच्छे बदलाव की ओर इशारा कर रहे थे।
हाँ, एक सकारात्मक मोड़ की तरफ और जिसमें भारत की खास भूमिका होगी, ऐसा भी संकेत था।
ये तो हुई भविष्य की बात, पर क्या पूज्य गुरुदेव ने सिर्फ भविष्यवाणियां की या वर्तमान में कुछ करने को भी कहा, वो विचार क्रांति वाली बात?
हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ विचारक नहीं थे, वो कर्मयोगी थे। उन्होंने सिर्फ लिखा या कहा नहीं, बल्कि एक सक्रिय आंदोलन छेड़ा। विचार क्रांति मतलब लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव लाना।
वर्ष का कोई मॉडल भी दिया उन्होंने?
हाँ, इसका एक प्रैक्टिकल जीता जागता मॉडल उन्होंने हरिद्वार में शांति कुंज के रूप में खड़ा किया।
और इस क्रांति के तीन स्तंभ बताए।
तीन स्तंभ कौन कौन से?
पहला, लेखनी, मतलब उनका साहित्य, जैसे अखंड ज्योति पत्रिका, हजारों पुस्तकें जो उनके ज्ञान शरीर का प्रकाश फैलाए।
दूसरा,
वाणी, यानी प्रशिक्षण शिविर, प्रवचन, समर्पित प्रचारकों के जरिए लोगों तक बात पहुंचाना, उन्हें जगाना।
और तीसरा,
ये सबसे महत्वपूर्ण होगा शायद।
हाँ, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, प्रामाणिकता, यानी जो कार्यकर्ता हैं, जो इस विचार को लेकर जा रहे हैं, उनका अपना जीवन, उनकी कथनी और करनी में समानता, उनका त्याग, उनकी सेवा, यही असली प्रमाण है।
तो ये सिर्फ विचार नहीं था, बल्कि उनको जमीन पर उतारने का पूरा एक एक्शन प्लान था, लिखने से लेकर बोलने से लेकर जीने के तरीके तक।
बिल्कुल, और उन्होंने कुछ आध्यात्मिक प्रयोगों की भी बात की।
हाँ, जैसे वो युग संधि महापुरुष शरण।
जी, ये बड़े पैमाने पर सामूहिक जप, ध्यान, यज्ञ जैसे अनुष्ठान थे।
हाँ।
इनका उद्देश्य था कि जो सूक्ष्म जगत की शक्तियां हैं, उनको भी सकारात्मक बदलाव की दिशा में मोड़ा जाए। उनका मानना था कि स्थूल जगत के हमारे प्रयास और सूक्ष्म जगत का सहयोग दोनों मिलकर काम करेंगे।
तो अगर हम सार निकालें इस पूरी चर्चा का, इस पुस्तक का, तो मूल संदेश क्या है?
मूल संदेश यही है कि ये जो युग संधि काल है, ये जो परिवर्तन का दौर है, ये विनाश और सृजन दोनों का समय है। एक तरफ आपको लगेगा कि बुराई बढ़ रही है, गलत चीजें हावी हो रही हैं।
हाँ, आजकल लगता भी है कई बार।
जी, लेकिन दूसरी तरफ अच्छाई की शक्तियां, सृजन के प्रयास, वो भी पूरी ताकत से उभरेंगे और अंत में जीत सत प्रवृत्तियों की ही होगी। लेकिन ये जीत अपने आप नहीं मिल जाएगी। इसके लिए सूक्ष्म जगत की अनुकूलता तो चाहिए ही, साथ में हम सब के सचेत संगठित मानवीय प्रयास भी चाहिए। उनका तालमेल जरूरी है, इसी से उज्जवल भविष्य का रास्ता खुलेगा।
और ये सवाल खड़ा करता है कि इस पूरे बदलाव में हमारी क्या भूमिका है?
सही कहा।
तो पूज्य गुरुदेव का ये काम सिर्फ उस समय का दस्तावेज नहीं है, बल्कि आज भी हमें हमारे समय की चुनौतियों को समझने और एक बेहतर भविष्य के निर्माण में सक्रिय होने के लिए प्रेरित करता है। एक तरह का कॉल टू एक्शन है।
बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न हम छोड़ जाते हैं। पूज्य गुरुदेव ने दशकों पहले जो विश्लेषण किया था, जो उम्मीद जगाई थी, वो आज की दुनिया में कितनी सच लगती है, कितनी प्रासंगिक है? और आज हम अपने अपने स्तर पर उस सदुपयोग और सुनियोजन को अपनाकर इस सकारात्मक बदलाव में अपना क्या योगदान दे सकते हैं?